चलिए शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलकतना व रज़कतना व अनकत्तना। लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल कुरआन व लकल हम्दु बिल ईमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا إله إلا الله پر ثابت قدم رکھئے آمین یا رب العالمین। हमने कल की क्लास में आयत नंबर 13 को शुरू किया था। आयत नंबर 13 वही आयत है जो इस सूरत में 31 टाइम्स रिपीट हुई है, और यकीनन जो इस वक्त हम इस पर वक्त लगा लेंगे फिर आगे बाकी 30 टाइम्स जब ये आएगी तो मैं वहां पर इस पर इतना वक्त नहीं लगाऊंगी, ताकि आपके सामने इस आयत की क्लैरिटी अभी से आ जाए। सूरतुर रहमान आयत नंबर 13। फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। तो तुम अपने रब की, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, उनकी तकजीब करोगे, उनकी नाशुकरी करोगे। हमने कल की क्लास में नेमा और आला का फर्क देखा था। आला वो नेमतें हैं जो इंसान की नेसेसिटी हैं, इंसान प्लस और किसकी नेसेसिटी है, जो कुमा के अंदर दूसरी स्पीशी आ रही है। जो नेसेसिटीज की नेमतें आती हैं वो आला के अंदर आती हैं, और जो इंसान को यूजुअली जमा की शक्ल में चाहिए होती हैं, एक नेसेसिटी नहीं होती इंसान की, कई नेसेसिटीज होती हैं। आला के अरबी जुबान में आला के अंदर तीन मानी मजीद किए जाते हैं। एक तो हो गया ना आला नेमतुन के मुकाबले में वो नेमत जो कि आपके लिए बहुत जरूरी नेमत है, आपकी बेसिक नेसेसिटी है आपके सर्वाइवल के लिए। आला के तीन मफहूम जो स्कॉलर्स करते हैं उसमें एक ये है, आला वो नेमत जो अल्लाह की तरफ से आपके लिए तोहफा है, आला वो नेमत जिसमें वंडर्स आते हैं, अजायब आते हैं, अगर आप उसको गौर करें, अगर आप उस पर थोड़ा सा वक्त लगाएं। तोहफा, वंडर, अजायब, और तीसरी चीज आती है बेहतरीन सिफात वाली नेमत, वो नेमत जिसकी कई क्वालिटीज हैं। हर एक नेमत की भी फर्दर आगे कई सिफात हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, आला में तीन आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं। आला वो नेमत जो अल्लाह की तरफ से तोहफा हो, आला वो नेमत जिसके अंदर आपको वंडर्स मिलें, जितना आप गौर करें आपको उसकी डेप्थ में और ज्यादा अल्लाह का तोहफा होना महसूस हो। तीसरा फैक्टर, वो नेमत जिसकी कई सिफात हों। सूरतुर रहमान के अलावा दो और मुकाम पर आपको ये आला का लफ्ज कुरान में मिलता है। एक ये आया है सूरतुल आराफ में, आयत नंबर 69। सूरतुल आराफ में आता है फज़कुरु आला अल्लाही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह की दी गई आला को याद करो ताकि तुम फलाह पा सको। सूरतुल आराफ आयत नंबर 69। दूसरा मुकाम जो सूरतुर रहमान के अलावा है वो है सूरतुन नजम आयत नंबर 55, जहां आया है फबिअय्यी आलाई रब्बिका ततमारा। यही आला का लफ्ज सूरत नजम आयत 55 में भी आया है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपने आसपास जो बेसिक सर्वाइवल की तुम्हारी नेमतें हैं उस पर गौर करो, वो अल्लाह की तरफ से असल में तुम्हारे लिए तोहफे हैं। हर तोहफे के अंदर, हर नेमत के अंदर अजायब हैं, और हर नेमत के अंदर फायदे हैं, ब्लेसिंग्स हैं। इन आला में नेसेसिटीज में याद रखिएगा, आपकी और मेरे लिए टॉप लिस्टेड नेकी, टॉप लिस्टेड नेमत जो आला की कैटेगरी में आती है वो कुरान है। इसलिए कि मुफस्सरीन कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुरान उनकी आला की कैटेगरी में आता है, बेसिक नेसेसिटी में आता है, ताकि वो कभी भी अपनी जिंदगी में फितरत को मिस ना कर सकें। और अगर आप गौर करें तो आपको कुरान में ये तीनों क्वालिटीज नजर आती हैं। कुरान انسانیت کے لیے تحفہ ہے. قرآن اس کے ہر لفظ میں، اس کی ہر آیت میں، اس کی ہر صورت میں عجائب موجود ہیں، یہ آپ کو امیز کرتا ہے. تیسرا، اس قرآن میں کانسٹنٹلی فائدے ہیں، بلیسنگز ہیں، برکت ہے، بینیفٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک آیت نمبر 12-13 تک انسانوں کو قرآن کا نعمت ہونا واضح کیا، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی طرف متوجہ کیا، زمین کی نعمتیں بتائیں جو خوراک کے طور پر رکھی گئی ہیں، اور پھر آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیر فور، اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک انڈین سکالر ہیں، ان کا نام ہے صدیق حسن خان. آپ کو ان کی بہت شارٹ تفسیر ملتی ہے، بہت ڈیٹیل تفسیر نہیں ہے. کنٹمپرری سکالرز میں آتے ہیں یوزلی، آپ کو کنٹمپرری سکالرز میں سب کانٹیننٹ میں بہت سے مفسرین مل جاتے ہیں. ان کی بریف تفسیر ہے سورۃ الرحمن کی تفسیر میں، انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اگر آپ اس آیت پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر غور کریں، جو یہ 31 ٹائمز آئی ہے، تو شروع میں جو یہ 8 ٹائمز آئی ہے وہ آپ دیکھیں گی کہ یہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں ڈسکرائب کی ہیں اس کے بعد آئی ہے. فرسٹ 8 ٹائمز جو آئی ہے یہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں ڈسکرائب کی ہیں اس کے بعد آئی ہے. پھر 7 ٹائمز یہ آئی ہے آیت دوبارہ سورہ رحمان میں، جو ایسے جگہوں پر آئی ہیں جہاں اللہ نے روز محشر کو یا اپنی سزا کو ڈسکرائب کیا ہے. سو فرسٹ 8 ٹائمز آئی ہے نعمتوں کے بعد، دنیا کی نعمتوں کے بعد. پھر 7 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ کی آیت آئی ہے سزا کے آیات کے بعد، یا جہنم یا روز محشر کے ڈسکرپشن کے بعد. پھر 8 ٹائمز آئی ہے لوور لیول کے جنتیوں کے لیے جو انعامات آئے ہیں ان کے لیے. اور پھر فائنلی 8 ٹائمز آئی ہے سابقون السابقون کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے. تو آپ کا جو ڈویژن ہے وہ ہے 8+7+8+8. یعنی پہلی مرتبہ جب 8 مرتبہ آئی تو دنیا کی نعمتوں کے درمیان میں آئی، پھر جب 3rd ٹائم آئی تو لوور جنتیوں کی نعمتوں کے درمیان میں آئی، اگین 8 ٹائمز آئی، پھر جو آخری 8 مرتبہ آئی تو سابقون السابقون ایلیٹ جنتیوں کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے آئی. تو دنیا کی نعمتیں ہوں یا جنت ہو، وہاں آپ کو اس کا ریشو مل رہا ہے 8، اور جہنم کے لیے کیا مل رہا ہے 7. تو جب صرف سمجھنے کی اور قرآن کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو آپ کو قرآن کے اندر یہ ربط، قرآن کے اندر یہ گہرائی، قرآن کے اندر یہ کنیکشنز کانسٹنٹلی ملتے ہیں جب آپ اس کے اوپر وقت لگاتے ہیں. بحقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، اللہ کی ذات پر غور و فکر نہ کرو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے پہچانو. کتنا پرفیکٹ اللہ نے آپ کو جسم دیا، کتنے پرفیکٹ اللہ نے چلتے ہوئے آرگنز دیے، کتنی پرفیکٹ باڈی دی کہ آپ کا وزن اگر مثال کے طور پر 55 kg ہے، تو آپ کے ننے مننے سے 2 گھٹنے آپ کا وزن آرام سے برداشت کر لیتے ہیں. اس بات پر بھی کتنا شکر کرنا چاہیے. سوچیں کسی کا وزن ہو 70 kg، تب اس کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں میں تو نہیں کھڑا ہونے دوں گا، پہلے وزن کرو 40 پھر کھڑا ہونا، میرے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا. تو اللہ کو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اللہ کی ذات پر غور و فکر نہ کرو، جو الفاظ آئے ولا تفکروا فی اللہ، اس کو محدثین نے ایکسپلین کیا ہے، اس پر مت سوچیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. قرآن میں آتا ہے نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. قرآن میں آتا ہے وجہ اللہ، آپ کو سورہ رحمان میں بھی مل جائے گا آگے، اللہ کا چہرہ. تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، یا अल्लाह की सिफात, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के जरिए अल्लाह को पहचाना जाता है। अल्लाह की जात पर गौर व फिक्र नहीं किया जाता कि अब आप और मैं बैठकर सोचने लग जाएं कि अल्लाह का हाथ कैसा होगा। जैसे हदीसे कुदसी में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला सातों आसमान को लपेट कर अपने हाथ में पकड़ लेंगे, तब हम सब सोचने लग जाएं कि अल्लाह ताला के हाथ के क्या साइज होगा या क्या डायमेंशंस होंगे। इससे मना किया गया है, इसके ऊपर बिल्कुल तफक्कुर, गौर व फिक्र, पॉन्डर ना किया जाए। हाँ, अल्लाह की बनाई हुई कायनात पर, नेमतों पर गौर व फिक्र करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तफक्करू फी आला इल्लाही, जो अल्लाह ने तुमको नेमतें दी हैं उस पर तफक्कुर करो ताकि तुम अल्लाह को पहचान लो। इसी आयत में आपको रब्बी कुमा मिल रहा है। आपको मैंने बताया था कि अरबी जुबान में अदद क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू और इंग्लिश के ऑपोजिट अदद आपको थ्री एंगल से मिलता है। उर्दू में वाहिद जमा होता है, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लोरल होता है, और अरबी जुबान में एक होता है, फिर दो के लिए ड्यूल आता है तस्निया, और टू प्लस के लिए जमा आता है। ये कुमा तस्निया है, ड्यूल है। ये कुमा प्रोनाउन है। जिस तरह से आप किसी भी जुबान में प्रोनाउन इस्तेमाल करती हैं, जब उसका नाउन पहले आ चुका होता है तब आप उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा आपका नाम है इरम, मैं कहूं इरम बहुत अच्छी खातून है। अब मैंने इरम का लफ्ज एक दफा बोल दिया, अब मैं कहूंगी इरम बहुत अच्छी खातून है, वो बहुत मुस्कुराती हैं, वो बहुत पोलाइटली बात करती हैं, वो बहुत जो है नाइस डिसेंट खातून है। तो ये जो मैंने वो बोला, मैं पहले इरम को डिस्कस कर चुकी थी, मैंने इरम का नाम मेंशन किया था, उसके बाद मैंने एज अ प्रोनाउन वो इस्तेमाल किया है। यहां पर जो रब्बी कुमा आ रहा है, इसमें कुमा प्रोनाउन है, और कुमा ये बता रहा है कि दो स्पीशीज की बात है, दो हस्तियों की बात है, दो ग्रुप्स की बात है। एक इंसान का जिक्र तो आ चुका, दूसरा कौन है इसके ऊपर अभी हम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन, दूसरा जिन है, इसके ऊपर हम अभी जो है मजीद बात करेंगे। इससे पहले कि मैं जिन की बात करूं, एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि फिर मैं आगे इंशाल्लाह इस आयत पर इतना वक्त नहीं लगाऊंगी। तो आपकी समझे, आपने ये आयत कर ली, आयत नंबर 13, तो आपकी बहुत बड़ा चंक सूरह रहमान का हो जाएगा इंशाल्लाह। सूरह रहमान वाहिद सूरत है जिसमें एक आयत को 31 टाइम्स रिपीट किया गया है। तो आपको तफसीर में क्लासिकल स्कॉलर्स की मुख्तलिफ रीजंस मिलती हैं, जिसमें वो बताते हैं कि क्यों अल्लाह ताला ने इस आयत को 31 टाइम्स रिपीट किया है। देखिए, कुरान फसाहत और बलागत में जिस वक्त नाजिल हुआ उस वक्त भी अपने क्लाइमेक्स पर था, और आज भी दुनिया के लिटरेचर में, जहां पर लिंग्विस्टिक दुनिया के लिटरेचर को स्टडी करते हैं, उसमें टॉप लिस्टेड बुक लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान है। इसीलिए आपको बताया था कि जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो अपने थीसिस जब बना रहे होते हैं तो उनको कुरान का कुछ ना कुछ चंक जरूर पढ़ना होता है, तो अरबी जुबान वो सीखते हैं। तो कुरान अपने एलोक्वेंस में अमेजिंग है। नंबर टू, कुरान अल्फाज के सिलेक्शन में अमेजिंग है। नंबर थ्री, कुरान उसलूब में, स्टाइल में अमेजिंग है। कुरान का सब्सटेंस हो या कुरान का स्टाइल हो या कुरान किससे किस वक्त कैसे बात कर रहा है ये फैक्टर हो, आपको इन सब में बयान की बेहतरीन खूबी नजर आती है। हमने जब बात की थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बयान सिखाया, तो आपको ये बताई थी बात कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए हम मुसलमानों को बात करने के बहुत से तरीके सिखा दिए हैं। जो इंसान अपने आप को कुरान से जोड़ लेता है, उसके बात करने में, उसके बयान में ये क्वालिटीज तीनों आ जाती हैं। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि वो कौन से अल्फाज में बात करेगा, जिसको आप सब्सटेंस कहते हैं। नंबर टू, वो इंसान किस स्टाइल से जुमला कंस्ट्रक्ट करेगा। एक है अल्फाज का सिलेक्शन करना, एक है वो जुमला आपने फ्रेज कैसे करना है, दिस इज अ स्टाइल, और तीसरी चीज है आपके सामने कौन है, उसके मुताबिक, उस ऑडियंस के मुताबिक आप अपने जुमले को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चाहे सब्सटेंस हो, स्टाइल हो या ऑडियंस हो, قرآن نے ہمیشہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آیات میں گفتگو کی ہے، اللہ نے کلام کیا ہے.